परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणति करते हुए, नमस्कार करते हुए पद्म पुराण का समापन, विष्णु पुराण का प्रारंभ, यह संधिकाल जहां समापन में हरि का स्मरण किया जाता हो, हरि के विभूतियों का स्मरण किया जाता हो, क्योंकि विभूति वह भगवान के ऐश्वर्य है। जिससे यह संसार चलता है, ईश्वर सब कुछ प्रदान करता है प्राणियों को, जैसे माता पिता रहने के लिए घर भोजन की व्यवस्था करते हैं, वैसे ही परमात्मा भी सभी प्राणियों के लिए सृष्टि के प्रारंभ में देता है और हरण भी वही करता है। और बीच की जो लीलाएं हैं, जनन वर्धन और फल फूल लगना, फिर अपक्षय शरीर में सिकुड़न और पुनः नष्ट हो जाना, ये सब उस परमात्मा के अंदर ही होते रहते हैं और हम लोग उसके एक अंग उपांग अंश में ही है। यह बात जब पुराणों का आरंभ होता है और जब पुराणों का अंतिम होता है तो भगवान यही कहना चाहते हैं वेदव्यास जी कि आप देखो, आप हमारे में ही हो, आपकी कोई इति कर्तव्यता नहीं है, बस आपको बस मोह में नहीं पड़ना है। और मोह में पड़ करके जहां आपको अभिमान हुआ कि हम इसके कर्ता है, तो उसके साथ ही आपका खेल वहां समाप्त होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह का एक प्रसंग है, इसमें इस लोक में आने के पश्चात व्यक्ति को कहीं न कहीं से लगता है कि मैं कितना यश अर्जन करूं, मैं कितना धन अर्जन करूं और कितनी मेरी लोक ख्याति हो जाए, इसके लिए वो हमेशा यत्नशील रहता है। यह अवतारों में भी देखा जाता है, क्योंकि वो माया स्वरूप में ईश्वर यहां आता है लीला करने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण के चरित्र की एक कथा आती है, जो कथा भगवान के विवाह से जुड़ी हुई है और साथ ही में स्यमंतक मणि का उपख्यान है। स्यमंतक मणि वो कथा महादेव जी अपनी प्रिया पार्वती से कहते हैं, कहते हैं कि सुनो पार्वती, एक सत्राजित नाम के व्यक्ति थे जिनकी एक यशस्विनी कन्या थी, जिस कन्या का नाम था सत्या, पूरा नाम तो था सत्यभामा, लेकिन लोगों को आधा कहने की आदत है। सत्यभामा को कोई सत्या कह देता है, कोई भामा कह देता है, कोई सत्यभामा, कोई कोई कहता है। तो वह भूमि के अंश से उत्पन्न हुई थी, क्योंकि भूमि देवी भगवान श्री कृष्ण की वल्लभा है। पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में भगवती भूमि धरा, यह भगवान विष्णु की पत्नी है, इसी के शक्ति के द्वारा उत्पादित करके परमात्मा और प्राणियों को अन्न प्रदान करते हैं, इसलिए वो सत्यभामा जी थी। वो श्री कृष्ण भगवान की दूसरी पत्नी थी। तीसरी पत्नी कालिंदी जी थी, जो सूर्य कन्या कहलाती है यम, और तीसरी मित्रविंदा जी थी। और उसके बाद उन्होंने सात महाबली बैलों को एक साथ रस्सी से नाथ दिया था। जिससे उनका विवाह हुआ। राजा सत्राजित की कथा कहते हैं कि उनके पास एक स्यमंतक मणि थी जो बहुत ही बहुमूल्य थी। मणि को पाकर के भला कौन नहीं धनी हो जाएगा। एक बार सत्राजित ने उस मणि को अपने छोटे भाई प्रसेन को दिया कि आप इसको ले जाओ, रखो अपने पास। बड़े लोग जब प्रसन्न होते हैं तो छोटे लोगों पर थोड़ी कृपा करके दे देते हैं, लो ले जाओ रखो, थोड़ा परीक्षण हो जाए कि तुम्हारे पास धारण क्षमता है कि नहीं, मणि धारण क्षमता तुम्हारे पास है कि नहीं परीक्षण के लिए दे देते हैं, लो संभालो भगवान ने सोचा कि रुको जरा इसकी परीक्षा करते हैं। प्रसेन से कहा, भाई जरा अपनी वो मणि जरा हमें दे देना कुछ दिन के लिए। प्रसेन ने कहा, क्या बात करते हो आप, आपको मैं मणि दूं? ये संभव नहीं है। बड़ी धृष्टता से कहा भगवान से, ये मणि हमें प्रतिदिन 8 भार सुवर्ण देती है और ऐसे 8 भार सुवर्ण देने वाली मणि को मैं आपको नहीं दूंगा। भगवान ने सोचा कि अभी इसमें कुछ न कुछ है अहंकार इत्यादि, इसलिए कुछ बोले नहीं। यदि कुछ बोलते तो संबंध खराब होता। आखिर वो ससुर जी के भाई थे छोटे, उनके साथ तो ऐसा करना नहीं था। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण प्रसेन इत्यादि समस्त यादवों के साथ जा रहे हैं जंगल में शिकार करने के लिए। उसी प्रक्रम में क्या होता है, अब प्रसेन जी के पास मणि थी तो जिसके पास मणि आता है वो चंचल हो जाता है, जिसके पास धन होता है वो चंचल हो जाता है। तो प्रसेन जी कहीं रास्ता भटक करके उस ग्रुप से कहीं अलग चले गए दूर तक। उसमें क्या होता है कि एक सिंह आता है और मणि के तेज को देख करके प्रसेन जी का वध कर देता है और वो मणि लेकर के दूर तक चला जाता है जंगल में अपने गुफा में। भगवान सोचे कि ये कहां गया। प्रसेन की शाम होते ही लोगों ने ढूंढा, प्रसेन कहीं प्राप्त नहीं हो रहे हैं, मणि तो नहीं ही है, प्रसेन भी गायब। एक सिंह ने शाम होते प्रसेन को मार डाला और मारकर वह अपने कंदरे में लेकर मणि चला गया जिस गुफे में रहता था। फिर जाम्बवान जी हैं, जाम्बवान जी ने उस शेर को मारा और उससे मणि लेकर के वो चले गए और जाकर गुफा में रहने लगे अपने परिवार के साथ। इधर भगवान शाम होता है, घर जाते हैं द्वारिकापुरी, चारों तरफ चर्चाएं व्याप्त हो जाती है, वो प्रसेन जी गायब हो गए और भगवान ने मणि उनसे मांगा था दिया नहीं, लगता है भगवान ने ही मरवा करके मणि अपने पास छुपा के रख लिया। अब बड़े बड़े यशस्वी व्यक्तियों के चरित्र को लांछन लगाने के लिए लोग ढूंढते रहते हैं अवसर कि कैसे इसको नीचे दिखाया जाए, क्योंकि जिसके पास कोई काम नहीं होता वो सोचते हैं कि थोड़ा इन पर लांछन लगा के कुछ कमा ले। तो लोग ढूंढते रहते हैं, बुराई ढूंढते रहते हैं। अब भगवान को यह पता चला कि हमारे ऊपर ऐसा लांछन है तो वो उसको मिटाने के लिए यत्न किए। जंगल के रास्ते में जाते हैं तो देखते हैं गुफा के भीतर एक, जहां वो प्रसेन मारा गया था उससे आगे रक्त की बूंदे पड़ी थी, खून बूंदे बूंद पड़ा था, क्योंकि सिंह ने प्रसेन को मारा था तो उसके पैरों के चिन्ह थे। और उसके पीछे पीछे गए तो आगे जाकर के देखे कि एक शेर मरा पड़ा हुआ है। फिर वहां से देखे तो उनको पता चल गया कि शेर यदि यहां मरा है, इसका मतलब है कि प्रसेन को शेर ने मारा और शेर को किसी तीसरे ने मारा और मणि लेकर अंदर चला गया। भगवान धीरे धीरे आगे गुफा के भीतर जाते हैं, वहां एक स्वच्छ भवन बना था जिसमें एक माता एक बालक को पालने में झुला रही है और लोरियां गा रही है, क्योंकि तो लोरी गाना अपने आप परंपरा है। छोटे छोटे बच्चों को जब झुला करके, आजकल तो लोरियां माताएं भूल गई है, आजकल तो पिक्चर के गीत आते हैं बस वही देखते हैं, अथवा पंखा में वो गुब्बारा बांध देंगे वो देखते रहेंगे। लोरी भूल गई, लोरी गई प्रेम की डोरी गई। ओ वो लोरी क्या गा रही थी, सिंह प्रसेनम अवधीत सिंहो जाम्बवता हतः। उस समय के जमाने में संस्कृत बोली जाती थी, अब धीरे धीरे भाषा आप भ्रंश हो गई, क्योंकि हनुमान जी जब गए हैं ना तो सीता माता के यहां सोच रहे हैं कि इनको अंगूठी प्रदान करूं सुवर्ण मुद्रिका, तो कौन सी भाषा बोलूं। यदि संस्कृत बोलता हूं तो राक्षस भी संस्कृत बोलते हैं, तो राक्षसम मन्यमाना सा सीता भीता भविष्यति कह रहे हैं यदि संस्कृत बोलता हूं तो। फिर भोजराज के जमाने में भी प्रसंग आता है, भारम न बाधती राजन यथा बाधती बाधते, तुम्हारा जो बाधती है वो जितना बाधित करता है भाषा की अशुद्धि, वह भार हमको बाधित नहीं करता है, ऐसा एक लकड़हारा कह रहा है लकड़ी बेचने वाला। तो ये संस्कृत का चरम उत्कर्ष था, जो आज शायद हमारे आचार और विचार में 80% तो रह गई है, लेकिन 20% भाषा के नष्ट होने से चली गई है, क्योंकि भाषागत संस्कार होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ये जो गा रही है इसका अर्थ सिंह प्रसेनम अवधित, सिंह ने प्रसेन को मारा, असिंहो जाम्बवता हतः, और सिंह को जामवान जी ने मारा। सुकुमार ए सुकुमार मारो दिही, तुम रो मत तव हे स्यमंतक, ये तुम स्यमंतक मणि लो, तुम भाग्यशाली हो इस मणि से तुम खेलो, ऐसा वो लोरी गा रही थी संस्कृत भाषा में। भगवान को पता चल गया, उन्होंने अपना शंख लिया और बजाया जोर से। जब जोर से शंखनाद किया तो जाम्बवान जी ने सोचा ये कौन सा वीर आ गया जो शंख बजाता है। वो गुफा से निकल करके बाहर आए, फिर क्या था, दोनों का युद्ध चालू हो गया, मुष्टा मुष्टी फैटा फैटिंग बाहु युद्ध, एक दूसरे को पकड़ करके मारना चालू किया। वज्र के समान जोरदार मुके भगवान भी मारते थे, उधर से जाम्बवान जी भी मारते थे। दोनों का युद्ध 10 दिन तक लगातार दिन रात चलते रहा। हम आप 1-2 घंटे कहीं चलते हैं तो पसीना छूटता है, प्यास लगती है, 10-10 दिन तक दोनों वीरों का युद्ध चलते रहा। देख करके जंगल के वहां आप गुफा के प्राणी भी हैरान रह गए, ये कौन। जाम्बवान जी ने देखा कि हमारा बल तो कम हो रहा है लेकिन सामने वाले योद्धा का बल और बढ़ रहा है।